के बीच में कर्म भी है तो भगवान ने गीता की 18वें अध्याय में 42 के श्लोक से लेकर के और 44 के श्लोक तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म बतलाए। इन शूद्रों के कर्मों को बतला करके और इन्हें कर्मों का आचरण करने से थी और परम सिद्धि की प्राप्ति हो जावे इसके लिए 45 के श्लोक में प्रतिज्ञा करी। स्वस्य कर्मण अमृत संसिद्धि लभते नरो स्वकर्मण नित्य सिद्धि यथा अभिन्दति तत्क्षणु स्वस्य कर्मणि अभिरते माने अपने अपने कर्म के बीच में अभिरत हुआ माने कर्म के बीच में संलग्न हुआ एकदम उसके मन लगा हुआ जिस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त हो जावे वो तो मेरे से सुन। तो यहाँ कर्म की प्रधानता क्योंकि सब वर्ण वालों के कर्म बताए और अपने अपने कर्म में लगा हुआ आदमी और लगा हुआ भी उसमें रत हुआ और रत इन्हें अविरत हुआ तनली हुआ तो कर्म की कमी को नहीं ना। अब उसको किस प्रकार से करना चाहिए भक्ति साथ में मिला करके जिसके मां भक्ति को जो दर्जे हो वो भी कमती नहीं रहे तो भगवान कहते यत प्रवृत्ति भूतानाम और ये न सर्वविदं ततम तव कर्मणात्म धैर्य सिद्धि विन्दति यत प्रवृत्ति भूतानाम और ये न सर्वविदं ततम आदेश लोक के मां जो सर्वव्यापी जो भगवान है परमात्मा जो है ईश्वर कहते हैं पुरुषोत्तम जो है उसी को वर्णन की भगवान के स्वरूप को वर्णन कहते प्रवृत्ति भूतानाम जिस परमात्मा से सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई सारे भूत प्राणियों की चारणा बारणा नहीं सब यौन मात्र चराचर प्राणियों की जिस परमात्मा से उत्पत्ति हुई है और जो परमात्मा सारे प्राणियों के अंदर व्यापक भगवान से इस वास्ते भगवान इसके उपादान कारण है और उत्पन्न कर करके उनके मां व्यापक होकर के कुछ उदाहरण से बतलाओ कैसे तो मोटे उदाहरण बतलाया जा रहा है कि जैसे आकाश है आकाश से वायु उत्पन्न हुए वायु से तेज हुए और तेज से जल की उत्पत्ति हुई बादल आदि तो बादलों की जो उत्पत्ति तेज से हुई किंतु मूल कारण तो आकाश तो आकाश ही उनको कारण है बादल क्योंकि बादल ऐसी का आकाश से वायु उत्पन्न होकर के तेज उत्पन्न होकर के बादल उत्पन्न हुए तो वे आकाश ही बादल के रूप में परिणित हुआ आकाश से कलम वायु के रूप में आकाशात वायु वायु आकाश वायु के रूप में बना वायु उसका कार्य है वायु आकाश का कारण है पर वायु से तेज और तेज से फिर बादल बने तो इस कारण से बादलों की उत्पत्ति का मूल कारण आकाश पांच भूतों के मां आकाश वायु तेज पृथ्वी और आकाश बादलों के मां व्यापक है कोई एक रति माने एक अणु मात्र भी ऐसी कोई जगह नहीं की जिस बादल के हिस्से में आकाश न हुए तो आकाश उसके मां व्यापक नहीं इसी प्रकार से आकाश की जो परमात्मा सारे प्राणियों में जड़ चेतन में स्थावर जंगम में जितने जो प्राणी है उनका जो शरीर है वे सब सब में परमात्मा व्यापक है और परमात्मा से इस तरह की उत्पत्ति हुई इस वास्ते वह कारण भी है। सारे संसार उसको कार्य है तो भगवान इस संसार के कारण भी हैं और इसमें सो व्यापक जैसे आकाश जो है सो वायु तेज जल पृथ्वी का कारण भी है और बादलों का कारण भी है और बादलों के बीच के मां व्यापक ये परमात्मा के स्वरूप की तरफ लक्ष्य करायो कि जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। प्रवृत्तिर्भूतानांगेन श्रमिदंतदम और स्वकर्मणार्थ सिद्धिं विन्दति मान जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है उस परमात्मा को अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों के अनुसार उसकी पूजा कर करके हर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो। तो परमात्मा की पूजा सेवा भक्ति की बात ही कह दी और कर्मा ने द्वार बना दिया और कर्म किसका क्या है जिसकी बात पहले कह दी तो उस कर्मों के बीच के मां अविरत हुआ भी पुरुष हर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। किस प्रकार से अपने अपने कर्मों में भी अविरत संलग्न है और वह कर्मा ने भगवान की पूजा को भगवान की भक्ति को द्वार बना लिया तो दोनों बात आ गई ना। इसमें यह भी नहीं कहो भी कर्मों की कहीं अवहेलना हो या कर्मों के मकड़े कमी हो क्योंकि अभी शब्द है वो कमी आने नहीं देता। हर भगवान की भक्ति में भी आप कमी नहीं बतला देखो कि भगवान के स्वरूप को बतला करके के और अपने कर्मों के द्वारा बैंक की सेवा करे तो कर्म ऐसा द्वार है हथियार है और सेवा मुख्य काम हो तो कर्मों की भी मुख्यता है और भक्ति की भी मुख्यता। अब उसको प्रकार प्रकार यू सब में जो भगवान है तो सब की सेवा ही भगवान की सेवा। हमारी ड्यूटी लगा दी कि कृषि गोरख वाणिज्य के द्वारा और सब जनता रूप जनार्दन की तुम सेवा करो जिसकी जो ड्यूटी लगा दी तो अब एक प्रकार से चाहिए हम कोई भी काम करें तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण के काम से भगवान की सेवा करें क्षत्रिय तो क्षत्रिय के काम से वैश्य तो वैश्य के काम से। पर गीता के में जो बात नहीं आई है वो दूसरे शास्त्रों से ले ले हुए क्यों इसमें तो युद्ध के समय में दो मुहूर्त में गीता शायद कही हो तो उसमें कितनी बात आ सके। तो चराचर सब प्राणी जी तो वृक्ष और पहाड़ ये भी उसके अंतर्गत आ गए और पशु पक्षी कीट पतंग ये भी उसके अंतर आ गए उसमें देवता आदि वे भी सब आ गए। तो बलि विश्व के द्वारा हम सारी संसार को समझो कि बलि देकर के ग्रास देकर के फिर भोजन करें तो वो सब दुनिया को आपने पूंज जाता है अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य के द्वारा फिर वर्षा होती है वर्षा से अन्न होता है और उस अन्न से सारे प्राणियों की तरपति होती है। तो भगवान कहते हैं गीता की तीसरी अध्याय के बीच के मां यक्षिषा शिन संतो मुचम ते सर्व किल विषयी और भुंजते ते त्वघं पापा ये पश्चिंतात्मकार नाथ यक्ष बचे हुए अन्न को खाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं और जो मनुष्य अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पचा करके खाता है वो पापी पाप को आराम कर खाता है। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यादन संभव है यज्ञात भवती पर्जन्यो यज्ञात भवती पर्जन्यो कर्म यज्ञ कर्म यक्षिशासिने संतो मुचन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते सुगं पापा ये पश्चिंतात्मकारणाथ अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म शुद्ध यज्ञ कर्म तो अन्न किस उत्पन्न हुआ कि यज्ञ और यज्ञ की उत्पत्ति किस हुए की परजन माने वर्षा से
मेघ से,
और उसकी उत्पत्ति किससे हुए उस मेघ से, फिर क्या हुआ कि उसकी उत्पत्ति वो किससे उत्पन्न हुए कि प्रथम अन्न की उत्पत्ति पर बात करी कि अन्न की उत्पत्ति किससे हुए, क्योंकि अन्न की जो उत्पत्ति होती है वो वर्षा से हुए, और वर्षा की उत्पत्ति जग से हुए, और जग की उत्पत्ति कर्मों से हुए, और कर्मों की उत्पत्ति मनुष्य। तो हम लोग कर्म करें तब ये शुभ काम। तो अन्न की उत्पत्ति की बात कुछ लिखी, अन्न से सारे भूत प्राणी जीते हैं, इसलिए तो सारे भूत प्राणी जीते हैं। तो इसका पूर्व का श्लोक यह बात बतला रहा है कि जो अपने भोजन पकाया जा रहा है तो पहला बलि विश्व कर करके सारी बलि सारी विश्व को बलि दे करके और फिर वो भोजन किया जाए तो अमृत के समान हो है, और उससे हमारे पापों का नाश हो। ऐसा नहीं करके इसके विपरीत करें तो वो एक प्रकार से उसको भगवान ने कहा कि वो पापी है और पाप कोई रांध करके खाता। तो इसे सब दुनिया के प्राणियों को वो अन्न पहुंच जाता। ऐसे ही हम जो तर्पण करते हैं तो पहले देवताओं को, फिर ऋषियों का, फिर अपने मनुष्यों का, फिर अपने पितरों का, पहला शुद्ध देवताओं को करें। देवताओं के बाद के बीच के मां, देवताओं के बाद के मां अपने समझो की ऋषियों को, मनुष्यों को, फिर पितरों को, और फिर भूत प्राणियों को, सब यौन मात्र चराचर प्राणियों तो सबको जल पहुंचाया ना। तो इस प्रकार से रोज हम सबको जल और अन्न पहुंचा करके भोजन करें, जल पीने, तो ये एक प्रकार से सबकी सेवा होगी, व्यापक सेवा। इससे भी विशेष सेवा वो है कि जो अपने सन्मुख पर्याय कोई अपने घर के अतिथि आया तो वो अतिथि की सेवा करना मनुष्य यज्ञ, सारे भूतों की सेवा करना भूत यज्ञ, उसी के भीतर के मां सब बात निकाल लेनी चाहिए कि वृक्षों को हम पानी सींचें तो स्थावर जो प्राणी है उनकी सेवा हो, तो हम जो है उसमें हमारा होना चाहिए भगवत भाव होना चाहिए, वो नहीं होता इसलिए हमको पूरा लाभ नहीं मिलता। भगवत भाव कैसे, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। रास्ते चल रहे हैं, वृक्ष आ गया, कोई प्राणी आ गया, हमारा सब में भगवत भाव है, क्योंकि यद्य प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं कृतम्। बस इस आदेश श्लोक को याद कर लो। आदेश श्लोक क्या बताता है कि भगवान सब में व्यापक, जब वृक्ष में भगवान व्यापक है तो वृक्ष की सेवा भगवान की सेवा, कुत्ते में भगवान व्यापक है तो कुत्ते की सेवा है वो भगवान की सेवा। तो इस भाव से भावित होकर के और हमको सबकी सेवा करनी चाहिए। हमारा अधिकार है कि जो हमारे सन्मुख पर जाए उसकी सेवा करें, और बलि विश्व के द्वारा सबकी करना, तो रोज बलि विश्व करना चाहिए, उसके द्वारा समान भाव से सबकी सेवा। और जो हमारे नजदीक पर जाए, सन्मुख पर जाए, एक शंख आदमी है, एक आंधा आदमी है, आंधा आदमी रस्ते जा रहा है और पास के माए कोई खड्डा आ गया, कोई कुआ आ गया, यदि वो उसमें गिर जाएगा तो उसका पाप किसको लगेगा, जिसके आंख है। कहीं इसको तो आंख भगवान ने नहीं दी, किंतु तेरे को तो आंख दी, तेने उसको अपनी आंख से काम लेना चाहिए था, तेने काम नहीं लिया आंख से जो लेना चाहिए था, इस वास्ते उसको भगवान दंड दी, उसके लगेगी चोट, पाप का भागी होगा संघ। कौन होगा कि दुनिया में जितने संख्य वो सब नहीं, उसके जो नजदीक दुनिया के लोगों को तो पता ही नहीं कि अंधा आदमी कहां खड्डे में पड़ रहा है, उसको क्यों भाव लगेगा गिरवट। तो इसी प्रकार से थी अपने नजर के बीच के मां पड़ गया कि ये अन्न के बिना मरता है, भूखा है, ये घास एक प्रकार से जल के बिना सूख रहा है, ये समझो कि मनुष्य रात के मां सर्दी के मां तप रहा है वस्त्र के बिना, ये रोगी एक प्रकार से दवाई के बिना मर रहा है। तो जिसके जो चीज की कमी है, अभाव है, अपनी वो शक्ति है, जिसकी शक्ति नहीं उसके लागू नहीं पड़े। अपने पास में रुपया है तो रुपयों के द्वारा, अपने पास में शरीर में बल है तो बल के द्वारा, और जब तक हमारी जबान बंद नहीं होती है और हमारे पास में बल भी नहीं, खास में पड़े हैं और रुपये भी हमारे पास में नहीं, पांच भाई हमारे पास आए तो हमारी जबान काम कर रही है, जबान के द्वारा, जब बोली बंद हो जाए तो मन के द्वारा,
कोई भी आपके पास में औजार है तो आपके लागू और नहीं है तो कोई आपके लागू नहीं, मुर्दे को बिल्कुल लागू नहीं है। और जानवरों का लागू नहीं है क्योंकि उनके उनके भगवान ने उनका वास्ते कर्तव्य नहीं बदलाया, बस सब भोगी होनिया है। और हम लोग मनुष्य हैं, हमारे लिए सोचा, और मुक्ति भी हमारी होती, उनकी मुक्ति का ही उपाय नहीं। जिस योनि में जितना एक रकम से लाभ होते हैं नुकसान, तो कुत्तों के लिए नहीं लाभ है नुकसान। हाँ, देवताओं की भोगी होनी है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बताया। तो इससे ये बात हमको लेनी चाहिए कि सब में ईश्वर बुद्धि कर करके सबकी सेवा करना, हम ये समझ करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको उपाय मैंने बताया, अब आपकी परीक्षा के वास्ते आप उस जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप कर रहे हैं 10 वर्ष से 5 वर्ष से और फिर भी भगवान आपको नहीं मिल रहे हैं, आपकी आत्मा का सुधार होकर उधार नहीं हो रहा है, आप मानो वहीं खड़े हैं, थोड़ा चले हैं, होना चाहिए थोड़ा ना लाभ, किंतु हुआ आपको एकन, इतनी कमी क्यों रही, तो आपका उसमें भगवत भाव नहीं हुआ। तो ये आपको कैसे क्या, हम परमात्मा को नहीं पूछे इस दृष्टि को लेकर कहते हो कि कोई इसमें झुकती है, बोले झुकती है, इस दृष्टि को लेकर नहीं झुकती है। क्या जी आपके घर के ऊपर कोई महात्मा आ जाओ तो उस वक्त के वहां उसे उनको कोई चीज की आवश्यकता है, वो गृहस्थी महात्मा या सन्यासी महात्मा या कोई है, उसको कोई चीज की जरूरत है और वह चीज आपने पेश करी, उसने स्वीकार कर ली, तो आपको कैसी प्रसन्नता हो, बोले खूब प्रसन्नता हो, हम जिसको महात्मा माने और वो हमारी चीजें स्वीकार कर ले तो हमारे को बड़ी प्रसन्नता हो। अरे बुझा भटका कभी भगवान आ जाए, बोले तो क्या कहूंगा, होश ही नहीं रहते तो कहूंगा सेवा की सेवा के। तो हम देखते हैं कि जिस अवसर के पास में आपका मुकदमा है, दुर्योग से वो कोई वक्त में आपका अतिथि होकर आपके घर के ऊपर आ गया, तो उसकी सेवा में आपकी तत्परता कितनी होती, बोले खूब होती है। तो अवसर जो है समझा कहाँ का है, बोले यूपी का, यूपी जो है भारतवर्ष में कितना हिस्सा रखे, बंगाल में है उसका हाथ, बोले कुछ इसका थोड़ा सा हिस्सा, और ये भारतवर्ष जो है ये आपने जम्मू द्वीप का कितना हिस्सा रखा, एशिया का, बोले बहुत थोड़ा, एशिया जो है पृथ्वी का कितना हिस्सा है, और पृथ्वी जो है तीनों लोगों में कितना हिस्सा रखती है, तीनों लोग ब्रह्मांड है, ये एक जो ब्रह्मांड है इसे कितने ब्रह्मांड आपको मालूम है, ये पता नहीं। अब भगवान कौन है, वह अनंत ब्रह्मांड के मालिक है कि नहीं, उनकी सेवा का मौका तुम्हारे को मिल जा रहा है तो तुम्हारी कैसी स्थिति होनी चाहिए यह तुम थोड़ा विचार लो, तो उसका जो फल हो तो तुम लेने के लिए तैयार कि भगवान हमारे को मिल जाए, और सेवा के लिए तुम चार नहीं, और भगवान का जो मिलना बतला वो सेवा से बतला, और सेवा करने के समय के मां तुम्हारी भगवत बुद्धि कहा है, भगवत बुद्धि यदि हो है, तो हम आचरण से पहचान लेंगे आपको कि भगवत बुद्धि होने के बाद वो ये दशा हुई थी। तो आपकी जो त्याग है वो भी परमात्मा की प्राप्ति करा सके है, किंतु आपको थोड़ी प्रतीक्षा करने की विलंब लगे, और जैसे आपका भाव बढ़ता चला जाएगा ऐसे समझो कि विलंब कम होता चला जाएगा, तो विलंब के लिए जन्म कितने जन्म भी लग सकते हैं, ये आप गहराई से चलो और तेजी से चलो तो एक ही जन्म हो जाए, और तेजी से चलो तो एक साल में हो जाए, और तेजी से चलो तो एक महीने में हो जाए, और तेजी से चलो तो एक मिनट में हो जाए। यहां से हमको प्रगति जा रहा है, हम पैदल चले तो महीनों में पहुंचे, और घोड़ा गाड़ी में चले तो दिनों में पहुंच जाए, और विमान में बैठ के चले तो घंटों में पहुंच जाए, और योग के जरिए चले तो मिनट भी नहीं लगे हम क्षण में पहुंच जाए। चलने का साधन होना चाहिए हमारा, जैसा साधन तो इसी प्रकार से ये बात है, हमारा जो साधन है वो तेज हुए, तेज क्रिया में, क्रिया का इतना मूल्य नहीं है, भाव का मूल्य है। थोड़ी भी क्रिया आपका कल्याण करने वाली है, किंतु भाव पूरा होना चाहिए। तो ये भाव हो जावे कि नहीं, सब भगवत मान। उदाहरण हमारे को, उदाहरण बहुत तैयार हमारे पास, उदाहरण तैयार है, शास्त्र तैयार है, युक्ति तैयार है, अब तो जिसे समझा सके, करना तो आपको होगा। वशिष्ठ की गऊ है और पुत्र की इच्छा के वास्ते दिलीप उसके पास में गए और उन्होंने कहा कि यदि पुत्र चाहते हो तो इस गऊ की सेवा करो। तो भगवान एक प्रकार से उस प्रकरण को रघुवंश में देखो या आपने वाल्मीकि रामायण में देखो, कोई भी पुस्तक में देखो कि राजा दिलीप ने जाकर के गऊ की किस प्रकार से सेवा, महात्मा का वचन मान के, वहां गऊ में उनकी कोई परमात्म बुद्धि नहीं, वशिष्ठ का हुक्म है, वशिष्ठ की गऊ है, उन्होंने हुक्म दे दिया और अपने इच्छा एक पुत्र इच्छा भी बहुत छोटी, छोटी इच्छा के वास्ते उनकी सेवा के लिए कितनी तत्परता है कि गऊ बैठती है तो राजा बैठता है, गऊ चलती है तो उनकी चाल में चलता है, गऊ खाती है तो उनको खिला करके फिर खाता है, गऊ के वास्ते बैठने के वास्ते साफ सुथरी सेवा कर देता है। वो गऊ की सेवा करता है कि जैसे मानो वशिष्ठ की सेवा करता है, महात्मा की सेवा जो करे ऐसी वो गऊ की सेवा, गऊ नहीं एक महात्मा की तुल समझ करके सेवा। और गऊ के ऊपर आक्रमण करने के वास्ते जब सिंह आया और अपने धनुष बाण को समाया तो कुछ भी उन्हें उसे काम नहीं चला, जवाब दे, तब एक प्रकार से हाथ प्रार्थना करी कि आप इस गऊ को मत खाओ, मुझको खा लो, इसको तुम छोड़। बोले राजा कैसी बात कहते हो, अरे कहा तो तुम्हारा राजा का शरीर, कहा गऊ का शरीर, इस गऊ के लिए तुम अपने शरीर को देते हो कि मेरा धर्म। बोले तुम वशिष्ठ को ऐसी और कितनी गऊ मंगा कर दे देना, तुम्हारे पास बहुत रुपये हैं, इसे मेरा धर्म है इसकी मैं सेवा करता हूँ, तो मेरे जीते हुए इसको मैं नहीं खाना देता, किंतु अब मेरा बस बच रहता है मैं तुम्हारे से जिद करूं तो तुमको तो मन सी चाहिए ना, तुम हमारे को। बोले अच्छा सावधान हो, मैं आ जाऊं। राजा तरह सावधान बस गया लंबा भी, थोड़ी देर के बाद देखता वो नहीं आता है, बचा यहाँ बाघ नहीं है, गाय। गाय ने कहा कि राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मई बाघ का रूप धारण किया, बाघ वो खुचुड़ी थोड़ी परीक्षा लेगा, अब तुम हमारा दूध पी लो, तुम्हारे एक प्रकार से बहुत उच्च कोटि का लड़का पैदा होगा जिसके नाम से वंश लगा, उसी का नाम रघु हुआ, रघुवंश तिलक। मैं दूध नहीं दूंगा, वशिष्ठ की गाय और वशिष्ठ की अनुपस्थिति में मैं तुम्हारा दूध दूं तो चोर का काम हो, लड़का हो सकता। मनीष की बोली बोल करके गा करिए, तुम मेरा दूध पी लो, नहीं दिया। फिर वहां आया और वशिष्ठ ने हुक्म दिया तुम दूध, तुम उसके रेगुलर का पैदा हो। तो आप पूछे थे कितना करनी चाहिए सेवा, इतने करनी चाहिए जैसे राजा दिलीप ने करी। अब दूसरा वो उदाहरण दिया जाता है कि वो सेवा बिना उठाए खुद आकर के आपके घर के ऊपर कोई चीज दे जा, जैसे नामदेव जी रसोई बना रहे हैं, अरे कुत्ता आया आकर दो रोटी उसमें दी, अरे लेकर के दौड़ा, अरे नामदेव जी घी का कटोरा लेकर साथ में दौड़े, चेहरे वाला चेहरे इसको चौपड़ दे, ये रोटी है चुपड़ी नहीं है, थोड़ा चेहरो सब्र करो, अरे वो दौड़ा है। अब अपनी आत्मा पर ख्याल करो कि अपने रसोई बन रही है, भूखे हैं, और कुछ आकर दो रोटी ले जाओ तो घी का कटोरा लेके जाओगे कि लाठी लेके जाओगे, ये भी तुम्हारा विचार लुप्त हो जाएगा कि लाठी लेकर उसे कुत्ते से रोटी छुटा भी लेंगे तो वह रोटी कौन काम की, कुत्ते से भी गई हमारे से भी गई, हमारे से तो पली गई और कुत्ते से भी गई।
किंतु तुम्हारे अचानक से दिल में ये भाव है, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, उस वक्त में भाव आना चाहिए। अपने नामदेव जैसा, नामदेव जैसा आपके भाव और फिर भगवान आपको प्रकट होकर दर्शन दे रहे, तब आप हमको भी कह सको, शास्त्र को भी कह सको, जो कह सको देखो तुम कहता व्याख्यान दे रहे हो, हम तो वैसा करते होता नहीं, तो फिर तुम सोचो वैसा करते ही नहीं, उसमें सोचो वाला। तो भगवान की कर्म की कोई कमी नहीं है, भगवत भाव की हमारे मतलब, जिस दिन भगवत भाव आप में पूर्ण हो जाएगा, भगवान नहीं रुकेंगे, दूसरों के रोकने पर भी ना, रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। तो ये बात आपको बतलाई, माने जिसमें भक्ति भी और जिसमें कर्म दोनों जिसके वहां शामिल है, अब वो चीजों का आपको बतलाया जाता है कि जिसकी वहां केवल भक्ति, क्रिया का कोई स्तंभ नहीं, भक्ति रूप क्रिया वो क्रिया है, चाहे उसको गौणी रूप से क्रिया मान लो, किंतु आपने वास्तु के मां जो यज्ञ दान तप ये जो कर्म है या वर्णाश्रम के कर्म है, इनका कोई संबंध नहीं। तो ये भक्ति भी से जो कुछ है सुबह, जैसे कल आपको बताया था गीता की छठी अध्याय का अंतिम श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना सर्वदामान भजते युमान सैने युग सतम होता। और जितने योगी हैं उनके साथ में वो चलेगा सर्वेषां योगी नाम, जितने जो योगी हैं उनमें मद्गत अंतरात्मा जो पुरुष है, मेरे में मन बुद्धि जिन्होंने लगा दिया है और श्रद्धा पूर्वक जो मेरी उपासना कर रहे हैं एक प्रकार से, वो युग सतम है। तो यहाँ समझो कि यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, वर्णाश्रम का धर्म है, कर्म कोई की बात यहाँ नहीं। और अनन्य चेता सततम योमान समृति नित्य से और तस्याहं सुन पार्थ नित्य युग तैसे योगी, अनन्य चित्ती जो नित्य निरंतर मेरा श्रमण करता है उसके उस योगी के लिए मैं सुलभ। या एक प्रकार अनन्य माने अनन्य चित्त हुआ, अनन्य चित्त हुआ पुरुष है, नित्य निरंतर, नित्य माने सदा और निरंतर माने तार मीट होते, एक ही काम जमा लगा भगवान के, दूसरा साथ नहीं है। जो मन समर्थ नित्य से जो मेरे को नित्य श्रमण करता है, सच्चे हम सुन व्यापार से नित्य युक्त से योगी ना, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, शायद मैं तुरंत मिल जाऊं, पर ऐसा होना चाहिए। और केवल भक्ति जैसे मैया वेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपास थे श्रद्धा परियोपेता से में युक्त तमामता, वहां युक्त तमामता मेरे में चित्त का जिन्होंने समावेश कर दिया है और परम श्रद्धा करता हुआ और जो मेरी उपासना करे मेरी भक्ति करे वह सब में युक्त तम है। तो यहां भी एक प्रकार से श्रद्धा और मन को भगवान में लगाने से संबंध है। तो इस प्रकार से इसे चिंतन करने को नाम क्रिया लेने में, एक प्रकार से ध्यान करने को